तो ये भगवत गीता का जो श्लोक तीसरा अध्याय है, बेसिकली कर्मयोग के बारे में बताया गया है ना? बहुत ही उत्तम ज्ञान है इस अध्याय में। तो कर्मयोग का जो ये अध्याय है, इसमें बेसिकली इसमें जोर दिया गया है कि हम कर्म करें, कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति, कर्मों का त्याग न करके, कर्मों को त्यागे नहीं बल्कि कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। इसको बंद कर दीजिए, आवाज आ रहा है ना? तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था अध्याय की शुरुआत में, हे कृष्ण, आपके हे जनार्दन, हे केशव, पहला श्लोक है, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? और आप चाहते हैं कि हम आत्मा हैं, आप बता रहे हो हम आत्मा हैं और आत्मा को कुछ करना नहीं चाहिए, इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में लगा क्यों रहे हैं? क्यों आप चाह रहे हैं कि मैं लड़ाई करूं, है कि नहीं? क्यों ना मैं सब लड़ाई उड़ाई छोड़ के जंगल में चला जाऊं आज ही? आप क्यों लड़ाना चाह रहे हो मुझे? क्योंकि आप तो बता रहे हो हम आत्मा हैं, तो आत्मा को इस संसार में लड़ने से क्या फायदा? तो आप क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है हम आत्मा हैं, शरीर, तो फिर अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा के लिए तो इस संसार में लड़ने का कोई तुक नहीं बनता, तो फिर आप मुझे लड़ा क्यों रहे? अभी बात मान लिया, मैं आत्मा हूं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने बोला, तो उसी को उत्तर में कृष्ण बता रहे हैं कर्म योग के बारे में। अर्जुन पूछेंगे बाद में फिर से कि आप मुझे ये बताओ कि कर्म का त्याग करना अच्छा है या कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति अच्छी है? तो इसी का उत्तर इसमें दिया गया है। भगवान ने बताया कि दो चीजें, एक त्याग और एक सन्यास। सन्यास और त्याग में अंतर है, क्या अंतर है सन्यास त्याग में, कोई बताएंगे?
सन्यास में कोई इच्छा ही नहीं रहती है और त्याग में इच्छा नहीं था। जब आप त्याग कर रहे हैं इसका मतलब कोई चीज आपको पसंद है आप उसको छोड़ रहे हैं,
है भी नहीं है। 18वें अध्याय में इसके बारे में बताया भगवान ने कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है ना? तो 18वें अध्याय जो लास्ट अध्याय है उसमें बता रहे कि दूसरा श्लोक देखिए, 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तो भगवान ने उत्तर दिया है ना, क्या पढ़िए? अर्थ पढ़िए, आप पढ़िए, हिंदी में पढ़िए दूसरा।
भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं।
यहाँ परिभाषा दिया गया है संन्यास का और त्याग का। अब बताइए अंतर क्या है, आप बताइए, विवेक बताएंगे। फिर
भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं। इसमें तो शब्दों का अंतर लग रहा है, परित्याग और त्याग।
नहीं, शब्दों का अंतर नहीं है तो मुझे जो लग रहा है, क्योंकि पहले में जिसमें जो संन्यास की परिभाषा है उसमें भौतिक इच्छा पर आधारित कार्यों का परित्याग
yes.
और दूसरे में फल के त्याग को कार्यों से जो फल प्राप्त होगा उसके त्याग को
त्याग करते हैं।
हाँ, उसके त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। तो एक में कार्यों का है और दूसरे में फल का त्याग है।
वेरी गुड। जस्ट लाइक उदाहरण, सिंपल एग्जांपल, आप क्या कर रहे हो कि जैसे आप यू आर स्टूडेंट, तो आपका कार्य है स्टडी करना। तो दो चीज आप भगवान के लिए दो चीज त्याग से, या तो अभी स्टूडेंट लाइफ को ही त्याग दीजिए, है ना, और दूसरा क्या है कि स्टूडेंट लाइफ पूरा अच्छा से कीजिए, कर्म कीजिए, और उसका जो आपको फल मिलता है इसके द्वारा पोस्ट पोजीशन, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, आप उसको त्यागिए, अपने लिए नहीं यूज करके क्या करना है, भगवान की सेवा लगाना है। धन या जो ऐश्वर्य है ना, जो प्रतिष्ठा जो भी आता है उसका त्याग करना है। मतलब कि कर्म करने से जो रिजल्ट मिला, आपको जो फल मिला, उस फल को क्या करना है, भगवान को अर्पित करना, उसको त्याग,
पहले त्याग
कर्मों का ही त्याग कर दिया।
तो कर्मों का त्याग हो सकता
है? हाँ, तो दोनों तरीके ऑप्शन है, एक कर्मों का त्याग और दूसरा कर्म के फल का त्याग। कर्म कीजिए लेकिन उसके फल का त्याग कीजिए, है ना। तो ये लेकिन यहाँ पे जो तीसरा अध्याय जो हम लोग विशेष पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो दोनों रास्ते हैं, आप समझ बात को, लेकिन दोनों रास्तों के लिए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपके इंद्रिय पे कंट्रोल होना चाहिए। आप कर्मों का भी त्याग नहीं कर सकते या कर्म फलों का भी त्याग नहीं कर सकते अगर आपकी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में नहीं है, है ना। तो अगर व्यक्ति की इंद्रिय अगर नियंत्रण में नहीं है तो क्या करता है, कर्मों का त्याग तो कर देता है लेकिन मेडिटेट करते रहता है मन में, है ना। अरे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो सडनली कोई व्यक्ति मैं आज से ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, सब स्टूडेंट लाइफ छोड़ के, और ब्रह्मचारी चला गया, कल अपना सामान उमान उठाए और मंदिर में जाके बैठ गए, और दो दिन के बाद पांच दिन बीत गया और फिर से याद आने लगा, अरे क्रिकेट मैच चल रहा है वर्ल्ड कप, लगता है गलती कर दिया मैं क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बाद आना चाहिए था, असल बात को ना। इसका मतलब है कि हमने त्याग तो किया है ना, हमने संन्यास तो लिया, कर्मों का त्याग किया, लेकिन मन से त्याग नहीं हुआ, तो इसको वास्तविक त्याग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये मिथ्या मिथ्या त्याग है। तो इसीलिए जो वास्तविक त्याग होता है उससे पहले व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए त्याग का। त्याग तो सबको करना है संसार में, ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मचारी बनते वही त्याग करते हैं, ऐसा नहीं है। एक न एक दिन सबको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, है ना। अंतर बस इतना है कि आप वॉलंटरी त्यागो या जबरदस्ती आपसे त्याग करवाया जाएगा, अंतर बस इतना ही है ना। वॉलंटरी अगर आप त्यागेंगे सोच समझ के तो आपको दुख नहीं होगा, और जबरदस्ती आपसे छीना जाएगा तो क्या होगा, दुख है। इतना ही अंतर है। हर व्यक्ति को त्यागना है इस संसार को, इस संसार की वस्तुओं को, इस संसार के संबंधों को, पूजा प्रतिष्ठा जो भी पोस्ट पोजीशन है, हर चीज आप जितना भी अर्जित कर रहे हो एक दिन सबको त्यागना है कि नहीं। अंतर बस इतना ही है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसको ज्ञान के द्वारा त्यागता है, ज्ञान के द्वारा वैराग्य उत्पन्न करता है अपने हृदय में, और इसलिए बाय द टाइम आवर लाइफ एंड्स इज नॉट अटैच्ड, वो आसक्त रहता ही नहीं उन चीजों से, वो मल की तरह त्याग देता है। जैसे मल त्यागते हैं ना, मॉर्निंग में आप सब लोग जाते हो शौचालय में मल त्यागने के लिए, त्यागने के बाद आपको कैसा लगता है? मल त्यागने के बाद कैसा लगता है? रिलीफ मिलता है कि नहीं? लगता है कभी ये दुख नहीं करता, अरे बहुत त्याग दिया। कभी दुख करते हैं आप मृणाल को? नहीं करते ना, अरे बहुत त्याग दिया। नहीं बल्कि और रिलीफ होता है, जल्दी से त्यागो जाके ताकि रिलीफ हो, है कि नहीं? उसी तरह से जब व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे पहुंचता है तो इस भौतिक जगत की चीजों को उसके लिए एक बड़ा ही प्रेशर लगता है, प्रेशर जैसे स्टोमक प्रेशर बनता है ना, तो जल्दी से त्यागने का मन करता है। उसी तरह से आपका ज्ञान, दिव्य चक्षु आपका हृदय में प्रकाशित होगा, दिव्य ज्ञान, तो ये भौतिक जगत की जितनी सारे बोझ हैं ये प्रेशर की तरह लगेगा, कब इसको हम त्यागें? आपको इतना दुख होगा, अभी दुख नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें अभी ज्ञान नहीं है। दुख हो रहा है लेकिन आभास नहीं है, सुख का आभास नहीं है, है ना? सुख का आभास नहीं है, वास्तविक सुख क्या है, तो इसलिए हमको दुख हो रहा है, तो हमको पता नहीं है कि हम दुखी हैं। तो त्याग जो है वो ऐसे होता है, इसका एक नेचुरल प्रोसेस है जो शास्त्र में बताया गया है, जो नेचुरल प्रोसेस जो बताया गया है। इसलिए आज का जो वैज्ञानिक समाज है, इसमें जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, और आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में ये क्या करते हैं, 50 साल 60 साल की उम्र हो गई फिर भी जॉब करते हैं, रिटायरमेंट हो गया तो किसी कॉलेज में चले गए, वहां पे प्रोफेसर बन गए, क्योंकि एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। अब 60 साल की उम्र में नया जॉब पकड़ा है, है ना? इस तरह से दांत, सारे दांत गिर जाते हैं, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, है ना? लेकिन फिर भी जो वो कंटिन्यू रहता है, आशा तदपि न मुंचति आशा पिंडम, कहते हैं ना, अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो वापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंग जो है वो गल जाता है, अंग क्या हो जाता है, गल जाता है, मुंडम पलितम ऊपर जो है साफ हो जाता है, सारे बाल उड़ जाते हैं, हमारे तो अपने आप उड़ गए हैं, उन्होंने वॉलंटरी उड़ा दिया है। लेकिन आप अगर वॉलंटरी, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये क्या कर दिया आपने, बाल उड़ा दिए सारे, ओहो। जैसे मैं घर जाता हूँ ना, घर अपने, लोग बोलते हैं अरे ये क्या कर दिया, बाल क्यों हटा दिए, बाल बढ़ा के आना, बाल बढ़ा के आना घर पे, है ना? तो ये बाल अपने आप उड़ जाएंगे बुढ़ापे में, मुंडम पलितम साफ हो जाएगा। फिर वॉलंटरी अगर नहीं करेंगे तो जबरदस्ती उड़ा दिया जाएगा। तो भक्त बुद्धिमान होता है, वो क्या करता है, पहले ही उड़ा देता है कि ना रहेगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी आसक्ति बालों से, न होगा दुख, है कि नहीं? तो इसलिए बालों से आसक्त नहीं होते हैं, भगवान से आसक्त रहते हैं भक्त। तो ये जो तदपि निमुंचति आशा पिंडम, ये आशा जो है डिजायर टू एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने की आशा, बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं जाती है ना? और इसलिए वैराग्य नहीं आता है, और जब जबरदस्ती छीना जाता है तो बड़ा दुख होता है। जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, ठीक, बहुत अच्छा से उसको 15-20 करोड़ का बिल्डिंग बनाया आपने अपने रहने के लिए, उसमें हर चीज का फैसिलिटी, एसी हर चीज लगवाया, हर चीज बड़ा ही अच्छा तरीके से लगवाया, नौकर चाकर सब। और जिस दिन आपका गृह प्रवेश हुआ उसी दिन आपको नोटिस आ गया सरकार का, Without delay, immediately within a second you have to vacate this house. नोटिस नहीं आ गया, आप नोटिस नहीं आया, आपको निकालने उठा के ले जाने के लिए लोग आ गए, क्योंकि नोटिस नहीं आता है यमराज जी के, नो नोटिस पीरियड, डायरेक्ट एक्शन। आपने इतना आशा लगा कि ये बनाया था कि ये करूंगा, यहां पे मैं सोऊंगा, यहां पे मैं खाऊंगा, डाइनिंग हॉल, बेडरूम है, यहां पे मैं बैठ के टीवी देखूंगा, यहां पे मैं है ना बच्चों के साथ खेलूंगा ना, यहां पे मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करूंगा ना, हर चीज बनाया आपने, लेकिन आ गया नोटिस, नोटिस नहीं, डायरेक्ट चलो उठो, जबरदस्ती जबरदस्ती होगा, उठो। अब अरे क्या हो रहा है, क्यों उठा रहे हो मुझे, मैं देखो इतना मैं कोई सुनवाई नहीं, उठो उठो उठो। बांध के तीन दूत आते हैं यमराज के, तीन रस्सियां बांधते हैं गले में, आत्मा के सूक्ष्म शरीर के गले में, ग्रॉस बॉडी के गले में नहीं, सूक्ष्म शरीर को घसीटते हुए, पापी जीवात्मा को घसीटते हुए बताया गया है शास्त्रों में, कपिल देव बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि कैसे ले जाते हैं उसको, घसीटते हुए ले जाते हैं है ना जमीन पर, उजारना नहीं, बोल नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, सुनते नहीं, घसीटते हुए कैसे नहीं जाओगे, चलना पड़ेगा। और रास्ते में जब जाते हैं तो बताते हैं कि जंगल का रास्ता है, हजारों मील लंबा रास्ता है यहां से है ना, समयमानीपुरी का, यमराज जी का जो लोक है समयमानपुरी, तो वहां पे जाने रास्ता है, इधर जंगल है इधर जंगल है, दोनों जंगल में आग लगी हुई है, इतना हीट है वहां पे, और रेत और ऊपर से सूर्य सनलाइट, इतना तीव्र तेज सनलाइट है, और नीचे रेत है, नीचे रेत, और उसमें घसीटते हुए जीवात्मा को ले जाया जाता है यमराज के लोक में, यमलोक में। फिर उसे पूछा जाता है तूने बहुत बड़ा घर बनाया था, कहां से पैसा लाया, बोलता है कहां से क्या, मैंने कमाया था। फिर उसको दिखाया जाता है कि तुमने क्या क्या किया है सारा, और उसको सजा दी जाती है उसकी कर्मों की। तो एक तो उसने इतना मेहनत करके बनाया और उसको एंजॉय नहीं कर सका, दूसरा उसको बनाने के लिए पाप किए, उसके लिए यमलोक में सजा मिली उसको, क्या सुख मिला उसको, कुछ सुख मिला, कोई सुख नहीं, दुख ही दुख है मिला उसको। तो अगर आसक्ति रहेगी तो फिर जब मृत्यु का समय आएगा तो बड़ा क्या होगा, दुख होगा, कष्ट होगा उसको छोड़ने में। इसलिए वर्णाश्रम जो धर्म है हमारा, इसमें इतना सिस्टमेटिकली इसको डिजाइन किया गया है ताकि बाय द टाइम डेथ कम्स यू आर नेचुरली डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, 25 साल ब्रह्मचारी, नेक्स्ट 25 ईयर गृहस्थ, 50 साल की उम्र में बच्चे बड़े हो गए हैं, उसके बाद पति पत्नी दोनों घर ने घर का त्याग कर दिया, दोनों गए वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब पिलग्रिमेज प्लेस पे घूमते थे 25 साल तक, जंगल में जाके भगवान का ध्यान करते थे, और जितनी आसक्तियां थी उसको काटने का प्रयास करते थे। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, संन्यास लेने से पहले और गृहस्थ के बाद। तो संन्यास आप डायरेक्ट नहीं ले सकते गृहस्थ से, क्योंकि आसक्तियां जो गृहस्थ आश्रम हमने बना रखी है, नॉलेज रियलाइजेशन तो हो गया कि गृहस्थ आश्रम इज ए वेरी यू नो डेंजरस आश्रम, उसमें कई दुख हैं, जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा, तो जब आप अभी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए लोगों को गृहस्थ आश्रम में एंटर करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए है ना, कितना दुख है इसमें, कितना कष्ट है ना लोग। हाँ अगर आपको समझ, अगर अगर आपको विश्वास नहीं है तो कर सकते हैं। हाँ क्योंकि कोई बताता नहीं है ना, जैसे कोई गृहस्थ बताता नहीं है कि देखो ना मैं दुखी हूँ, क्योंकि सभी दुखी हैं। जैसे एक सर्कस है, सर्कस जानते, एक बार सर्कस कहानी बताया था मैंने, एक बार सर्कस आया था गांव में, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ था, सब एकदम बाहर से पैक था चारों तरफ, और टिकट बहुत महंगा था। प्रचार हो गया था पूरा कि बहुत अच्छा सर्कस है, बहुत अच्छा, मजा आएगा। तो हजारों लोगों की लाइन लग गई थी, है ना। तो जो सबसे पहला व्यक्ति था बड़ा एक्साइटेड था, है ना, कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मुझे पहले सर्कस देखने का मौका मिलेगा। तो उसको एंट्री जब मिली, अंदर गया तो देखा दो पहलवान एकदम बॉडी बिल्डर सामने खड़े हैं। उसको बोले आ जाओ आ जाओ, पकड़ के उसकी पिटाई शुरू हो गई। नहीं आवाज आवाज आ रहा है। अब बाहर लोग कह रहे क्या लगता है, बहुत मजा आ रहा है इसको सर। और एक्साइटेड हो गया, अरे देखो कितना स्ट्रेसी में है, चिल्ला रहा है। ओह बहुत बढ़िया सर्कस लग रहा है। फिर जब पिटाई उटाई हो गई, उसके बोला अब सर्कस पूरा हो गया, अब जाएंगे। बाहर आया तो दूसरा नंबर पे जो था उसने उसे पूछा कैसा था। तो उसको लगा थोड़ी देर के लिए कि मैं उसको बता देता हूँ कि मत जाओ, लेकिन फिर सोचा अगर मैं इसको बता दूंगा कि बहुत खराब था तो बोलेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन हम मुझे बोल ये बच जाएगा, ये बच जाएगा तो बाद में मुझे क्या बोलेगा, मुझे रिझाएगा। देखो तुम मूर्ख बन गए, है ना, तुम मूर्ख बन गए, देखो मैं तो बच गया बाबा। इसलिए कह रहा था बताता नहीं है, क्या करता है, नहीं बहुत बढ़िया था सर्कस, तुम भी जाओ, जरूर जाना, जरूर जाना, अंदर मिस मत करना, बहुत मजा आया, है ना। वही स्थिति है, सभी दुख झेलते हैं, पारिवारिक जीवन का दुख जो है सबको है, लेकिन क्या है कि उसको कोई शेयर नहीं करता, बताता नहीं है ना? तो इसलिए हमें इसको, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इसको समझते हैं, रियलाइज करते हैं, है ना। तो गृहस्थ आश्रम ऐसा डिजाइन ही है कि आप उसको अगर अच्छे से तरीके से पालन करेंगे तो आपको सफिशियंट रियलाइजेशन हो जाएगा 50 साल तक कि ये संसार जो है वो अशाश्वतम और दुखालय है। फिर उसके बाद 50 साल की उम्र में वो छोड़ के निकलते हैं। 25 साल लगता है उनको, जो हृदय की आसक्तियां बनी हुई हैं, वैराग्य ज्ञान हो गया लेकिन अभी वैराग्य नहीं हुआ है, तो 25 साल के अंदर वैराग्य विकसित करते हैं, डिटैच होते हैं घर से, होमली डिटैच्ड। तो कैसे डिटैच होते हैं, डिटैच होते हैं बाहर जाके वन में जाते हैं, तीर्थयात्रा पे जाते हैं, पति पत्नी दोनों साथ में भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के भक्तों से सत्संग करते हैं, और फिर जो है 75 साल की उम्र में पति पत्नी दोनों वापस आते हैं घर पे। पति जो है पत्नी को पुत्र को समर्पित कर देता है पुत्र के संरक्षण में, और पति जो है वो संन्यास देता है। नहीं, माता जी के लिए संन्यास नहीं, माता जी लोग जो घर पे रह के पति के साथ, पति पुत्र के संरक्षण में रहें और भगवान की भक्ति करें, है ना। तो अलग चीजें, अलग अलग स्तर है। जैसे कि ब्राह्मणों के लिए संन्यास आश्रम है, क्षत्रिय ज्यादा से ज्यादा वानप्रस्थ आश्रम जा सकता है, संन्यास आश्रम नहीं क्षत्रिय के लिए, और वैश्यों के लिए गृहस्थ आश्रम, और शूद्रों के लिए कोई आश्रम नहीं। तो वैश्य जो हैं उनके लिए गृहस्थ आश्रम तक, उससे आगे नहीं जा सकते, उनके लिए वानप्रस्थ अलाउड नहीं है। क्षत्रियों के लिए, इसीलिए आप देखिए धृतराष्ट्र और गांधारी लोग वानप्रस्थ आश्रम में गए थे, संन्यास आश्रम में नहीं गए थे, क्षत्रिय जो होते हैं। महाराज दशरथ वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते, संन्यास नहीं। तो ये लैडर है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इस तरह इतना सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है कि आपको मृत्यु आते आते आपका पूरा, तो संन्यास में भी कैटेगरीज है। तो संन्यास जो सबसे लो कट, जो फर्स्ट लेवल है उसको होता है कुटीचक, कुटीचक संन्यास। सडनली घर नहीं त्यागता है, बाहर नहीं घूमने जाता है, ये कितना ग्रेजुअल प्रोसेस। कुटीचक मतलब क्या करता है, वानप्रस्थ आने के बाद अपने गांव में ही एक कुटिया बनाता है। क्या करता है गांव में? कुटिया बनाएगा, कुटिया बना के वहां पे रहता है, घर में नहीं रहेगा, कुटिया में रहेगा, अकेले रहेगा और घर से खाना जाएगा। इसके बाद क्या कहता है, बहुदक, केवल खाना लेगा घर से बस। उसके बाद कहता है बहुदक, बहुदक मतलब कि घर से कुटी में नहीं रहेगा, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांव में रहेगा, कभी यहां पर इस गांव में कुटी बनाएगा, कभी उस गांव में कुटी बनाएगा रहेगा। उसके बाद कहते हैं परिवराजक आचार्य, परिवराजक आचार्य का मतलब है कि वो घूम घूम के क्या करेगा, प्रचार करेगा, एक जगह नहीं रहेगा, तीन दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रह सकता है वो, इसको बोलते हैं परिवराजक आचार्य। और जब और पक्का हो जाएगा तब जाके उसको बोलते परमहंस, परमहंस स्तर पर पहुंच जाता है। परमहंस स्तर जब पहुंच जाता है तो उसको इस संसार से किसी चीज से कोई आकर्षण बिल्कुल जीरो हो जाता है सारा, वो दिन रात जो है भगवान के ध्यान में बिल्कुल मग्न रहता है। शरीर को कुछ भी हो रहा है, नंगा है, ये है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, शरीर नंगा है, शरीर है ना, बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ा है, कोई उससे मतलब नहीं है उसको, क्योंकि शारीरिक बोध है ही नहीं उसको, शरीर में रोग है, उससे कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो इस स्तर पर बोलते उसको परमहंस, है ना, और वैष्णव संप्रदाय में उसको बाबा जी बोलते हैं, तो उस स्तर को परमहंस बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो उस दाढ़ी दल्ली में परमहंस स्तर पे जाने के बाद जो है जीव वो भगवान के डायरेक्ट सानिध्य में जाने के योग्य बनता है, फिर उसको संसार त्यागने में कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि और जल्दी चाहता है कि जल्दी से त्याग दे, है ना, जैसे कि आपका प्रेशर पेट में लगता है तो आप सोचते हो जल्दी से त्याग दे, है ना, इसी तरह से तो ये नेचुरल प्रोसेस बनाया गया है, लेकिन सडन नहीं हो सकता है ये, है ना, इसीलिए ग्रेजुअल चीजें देंगे। तो ये चार जो वर्ण है, आश्रम है, संन्यास, वानप्रस्थ, संन्यास, तो इसमें दो रास्ते, एक तो जनरली लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल गोज थ्रू लाइक दिस, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ज्यादातर जनसंख्या इसी तरह से जाती है ना, एंड इट्स मोस्ट रिकमेंडेड, लेकिन देर इज वन एनदर वे ऑल्सो, इसको बोलते हैं इसमें, उसमें क्या बोलते हैं, दोज हु आर वेरी वेरी एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड दोज हु हैव रियलाइज जस्ट बाई हियरिंग अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, जस्ट बाई श्रवण करके समझ गए कि ये संसार जो है दुखालय, इसमें कोई सुख नहीं है ना? तो वो क्या करते हैं, वो एक जंप मार दिया गया, जंपिंग स्टेप उनके लिए है, वो क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट संन्यास, 25 साल 50 साल वेस्ट नहीं करते, 25 साल गृहस्थ आश्रम का, 25 साल वानप्रस्थ आश्रम का वेस्ट, 25 साल डेवलप करवा सकती और फिर 25 साल डिटैच करवा सकती, गृहस्थ आश्रम क्या होता है, आसक्ति डेवलप होता है, और फिर वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है, उसको गृहस्थ आश्रम मतलब बांधते हैं अपने आप को, और फिर वानप्रस्थ आश्रम 25 साल उसको खोलते हैं, है ना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो समझता है कि मैं क्यों अपने आप को बांधू और फिर खोलू, और मैं खोलना ही तो क्यों ना डायरेक्ट जंप करूं, तो वो क्या करता है, जो सफिशियंटली रियलाइज्ड है वो क्या करता है, एक्सपीरियंस अंडरस्टूड समझ गया है वो, तो क्या करता है, वो डायरेक्ट जो है संन्यास, वो बीच में घुसता नहीं है। इसको वो इसलिए दो तरह के ब्रह्मचारी इसी के अनुसार बताए गए हैं, एक ब्रह्मचारी है जिसको बोलते उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी का मतलब क्या है कि वो जो है वानप्रस्थ गृहस्थाश्रम में जाता है ब्रह्मचारी आश्रम के बाद, और दूसरा होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब वो गृहस्थाश्रम में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट संन्यास आश्रम में जाएगा। तो दोनों का प्रोविजन दिया हुआ है, और ये भी बताया गया कि ज्यादातर लोग जो हैं वो दे लर्न बाय एक्सपीरियंस, तीन तरह के लोग होते हैं बताया गया शास्त्रों में, कि तीन तरह के लोग होते हैं मानव समाज, एक जो सीखता है, अनुभव करके, एक फर्स्ट क्लास जो है वो सुन के समझ सीख लेता है, उसको बताया शिक्षक ने, वो सुन लिया और समझ गया, हाँ ये बिल्कुल सही है, और फिर वो उसको फॉलो करते हैं। दूसरा वर्ग है वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कैसे, एक्सपीरियंस करके, अनुभव करने के बाद समझते हैं, और तीसरा वर्ग है वो अनुभव करने के बाद भी नहीं समझता है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ बताता हूं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, तीन बच्चे हैं क्लास में, टीचर तीनों को बता रहा है चोरी करना पाप है, गलत है। पहला बच्चा सुन लेता है टीचर से, समझ लेता है हाँ चोरी नहीं करूंगा टीचर ने बोला। दूसरा बच्चा क्या करता है, अच्छा टीचर ने बोला चोरी क्यों पाप है, नहीं पाप है मैं नहीं मानता इसको। उसके बाद वो क्या करता है, चोरी करता है, फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसकी पिटाई होती है। जब पिटाई हो जाती है, जब हड्डी उड्डी टूट जाता है, दर्द होता है, तब समझ अच्छा अच्छा हाँ टीचर ने सही बोला था चोरी करना आप आज से नहीं करूंगा, एक बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने, है ना। और एक तीसरे क्लास का व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, तीसरा बच्चा क्या कहता है, चोरी करना पाप है, नहीं 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 पाप है मैं तो करूंगा। वो करता है चोरी, पुलिस पकड़ती है उसको, जेल में ले जाती है, उसकी पिटाई होती है, पिटाई होने के बाद दर्द होता है, दर्द होने के बाद फिर से वापस आता है, फिर भी नहीं समझता, फिर आता है फिर चोरी करता है, फिर पुलिस पकड़ती है फिर पिटाई होती है, फिर जाता है फिर चोरी करता है फिर पिटाई होती है, इस तरह से उसका कंटिन्यू रहता है, ये थर्ड क्लास है। तो इसी तरह से इस संसार में तीन प्रकार के, तो नैष्ठिक जो होता है वो सुन के समझ लेता है इस संसार के बारे में, जो उपकुर्वाण होता है इसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम व्यक्ति अनुभव करके उसको समझता है। और एक तीसरा क्लास है इसको बोलते हैं गृह मेधि, वो सुन के भी एक्सपीरियंस करने के बाद भी नहीं समझता है ना। तो हमें जो है वो, इसलिए जो ये बीच का रास्ता है उसको ज्यादा रिकमेंड किया गया है वैदिक शास्त्रों में, क्योंकि ज्यादातर जीव जो इस संसार में है वो उस स्तर पे नहीं है कि वो डायरेक्टली संन्यास आश्रम में जा सके। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं मनुष्य की जोनी में, ऐसे मनुष्य हैं जो प्रकट होते हैं इस संसार में, जो कि सफिशियंटली एक्सपीरियंस होते हैं पिछले जन्मों में, तो उनकी बुद्धि जो है तीक्ष्ण होती है, वो समझ जाते हैं कि ये संसार जो है क्या है, दुखों का घर। जैसे शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने 12 साल की उम्र में संन्यास लिया था। आपकी उम्र कितनी है मेरे प्रभु? 24 साल, डबल है आप। शंकराचार्य ने 12 साल की उम्र में संन्यास लिया, माधवाचार्य ने 11 साल की उम्र में संन्यास लिया, है ना। रामानुजाचार्य ने तो मैरिज के बाद संन्यास लिया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्यों कैसे ले लिया, 12 साल की उम्र में कैसे संन्यास ले सकता है, उसको तो पता ही नहीं है संसार के बारे में। तो क्योंकि उसके पिछले जन्मों के क्या होते हैं, सुकृति होती है, तो जैसे ही जन्म लेता है तुरंत यही सब, मैं क्यों हूं इस संसार में, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जैसे भगवान बुद्ध थे, है ना, तो उनको क्या हुआ ना, सडनली उन्होंने देखा रहे लोग अपने कंधे पे उठा के ले जा रहे, राम नाम सत्य है राम नाम सत्य, रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्राइंग, क्यों दुख झेल रहे हैं ये लोग, क्यों दुख हो रहा है इनको, और ये जो व्यक्ति ये मर क्यों गया, क्यों मर गया, ये दुख क्यों हो रहा है इसको, तो देख के समझ गए, अरे एक दिन क्या मेरा भी यही हाल होगा क्या, मैं भी इसी तरह से जाऊंगा, खटिया पे उठा के मुझे ले जाया जाएगा, राम नाम सत्य और जलाया जाएगा। तो शमशान घाट में पहुंच गए बुद्ध जी, उन्होंने देखा जलाया जा रहा है शरीर को, मेरे भी शरीर को क्या ऐसे ही जलाया जाएगा, ओहो। फिर तब जब वापस आ रहे थे शमशान घाट से, तो रास्ते में देखा एक व्यक्ति ऐसे डंडा लेके करा रहा है, खांस रहा है, कभी कभी गिर थोड़ा देर बैठता है, थोड़ा फिर खड़ा होता है, फिर थोड़ा देर चलता है। तो बुद्ध ने सारे इतना दुखी क्यों, क्या मेरा भी यही हाल होगा एक दिन, ओहो। फिर उसके बाद ज्यादा देखता है थोड़ी देर पे एक कुष्ठ रोगी जो रोड पे खड़ा है और भीख मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे दे दे भैया, है ना, भगवान के नाम पे दे दे भैया, और उसके सारे शरीर में जो है कीड़े रेंग रहे हैं, सड़ रहा है शरीर, इतना दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है उसको, है ना। तो बुद्ध ने क्या है, मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा, तो ही इज लर्निंग, वो भी सीख रहा है, लेकिन किससे, दूसरों के अनुभव से, है ना। एक व्यक्ति होता है जो अपने अनुभव करके सीखता है, दूसरा क्या करता है, जो अनुभव कर रहे हैं उनके अनुभव से सीखता है, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो इस संसार में हम देखते हैं कि दूसरे अनुभव कर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, मृत्यु आ रही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुसन दर्शन, रोज कोई ना कोई मर रहा है कि नहीं, हर एक घंटे में 6000 लोग मरते हैं इस धरती पे, है ना। तो इसको देख के समझ जाता है कि मेरी भी यही हालत होगी, इसलिए मैं इस सब चक्रों में क्यों फंसूं, डायरेक्ट क्यों ना हमें इससे विरक्त होने का प्रयास करूं, भगवान की शरण में जाऊं। तो ये एक रास्ता है। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए क्या किया, गृह त्याग किया और उन्होंने ज्ञान के खोज में निकले। उसी तरह से कई ऐसे आचार्य भी हैं, तो क्योंकि पिछले जन्मों की स्वीकृति होती है तो बहुत जल्दी उसको ये बात समझ में आ जाता है, लेकिन जो पिछले जन्मों की स्वीकृति नहीं है और उसको विरक्त नहीं हो पा रहा है ये सब देखने के बावजूद भी, तो इसका मतलब उसको गृहस्थ आश्रम में जाकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां पर बताया गया कि उसके लिए हमें क्या करना है कि अपने को कर्म को करना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको कर्म करना चाहिए। जब तक इंद्रिय कंट्रोल नहीं हो जाता है तब तक हमको कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, संन्यास नहीं करना चाहिए, जब तक इंद्रिय निग्रह ना हो जाए, इंद्रिय कंट्रोल नहीं हो जाए। तो इसलिए अभ्यास होता है। तो जैसे हम कर्म जब कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें पैरेलली क्या करना चाहिए, कर्म से विरक्त होने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे आसक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ताकि जब सुटेबल टाइम आए 50 इयर्स एज आए तो हम धीरे से क्या कर सके, साइड ले सके। इसलिए कर्म के द्वारा साथ साथ हमें आध्यात्मिक प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, साधना जिसको बोलते हैं। उस साधना के द्वारा क्या होता है कि हृदय से हम विरक्त होते हैं जो कर्म कर रहे हैं। जैसे आप मॉर्निंग प्रोग्राम यहाँ पे करते हो सुबह उठ के चैंट, आप देखेंगे कि आप चैंटिंग करने से, सब करने से क्या होगा, आपको दिव्य ज्ञान हृदय में आएगा और ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र होते हैं, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति माता जो है, जब आप भक्ति माता को अपने जीवन में लाते हैं, भक्ति करते हैं, तो इनके दोनों पुत्र प्रकट होंगे। भक्ति और भगवान जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दो पुत्र प्रकट होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान प्रकट होता है पहले, उसके बाद पैरेलली डिटैचमेंट ऑफ दिस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो वो तब होगा जब हम कर्म करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैं IIT दिल्ली में था तो ये जो 8वां श्लोक है वो IIT दिल्ली के लोगो में लिखा हुआ है। IIT दिल्ली का जो लोगो है उसमें ये 8वां श्लोक लिखा हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम। केवल इतना ही लिखा है बस, आगे का श्लोक नहीं, 1/4 लिखा हुआ है और 3/4 गायब है। नियतम 8वां श्लोक 3रे अध्याय का, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत अकर्मण। अपना नियत कर्म करो, इतना तो लिखा हुआ है, लेकिन आगे का जो क्या है वो नहीं है। क्यों क्यों को नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या लिखा है और इसके बाद क्या लिखा है वो भी पढ़ना चाहिए ना। इससे पहले क्या लिखा है, 7वां श्लोक। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो किस प्रकार का कर्म करना है हमें, इस प्रकार का कर्म करना है, बिना आसक्ति के करना है कर्म। उस कर्म की बात करें, नित्यम कुरु कर्मत्वम, तो कौन सा कर्म नित्य करना है, ये कर्म बिना आसक्ति के, इंद्रियों को कंट्रोल करने के द्वारा, इंद्रियों को वश में करके फिर जो कर्म होता है उसको कहते हैं, उस वो कर्म को नियत अगर हम करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं बताइए, IIT में ऐसे कितने लड़के हैं जो कि नियतम कुरु कर्मत्वम है, सारे इंद्रियों को वश में करके है, कोई प्रोफेसर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, है? तो क्या फायदा है सब लिखने से, कोई फायदा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे सब्जी बहुत बनाते हैं ना, सब्जी अच्छा बना के उसके बाद एक धनिया का फ्लेवर डालते हैं ना, ऐसे धनिया छिड़क देते हैं ताकि थोड़ा सुगंध है धनिया का। उसी तरह से भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, सारा सब्जी इंद्रिय तृप्ति का सब्जी बनाते हैं, है ना, उसके बाद एक स्पिरिचुअलिटी का फ्लेवर छिड़क देते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का भी सुगंध आना चाहिए। वही हाल है ना? एक दो श्लोक लिख देंगे कहीं भागवत गीता का, सारा जो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति का है, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, ये पूरा भौतिक इंद्रिय तृप्ति का वैभव है, साम्राज्य है, माया का साम्राज्य है ये। और उसमें एक दो श्लोक कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, या सरकारी सरकारी दफ्तरों में करप्शन का साम्राज्य है, लेकिन वहां पे कोने में लिया सत्य में हो जाए थे। ये तो धर्मस्तत्व जया, लेकिन ये तो धर्मस्तत्व जया, वो लेकिन वो थोड़ा फ्लेवर डाल देते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है उनको, जस्ट थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा टेस्ट, नया टेस्ट आए। इसलिए कभी कभी भौतिकवादी व्यक्ति के मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं, थोड़ा वैरायटी होना चाहिए लाइफ में। ये नहीं कि भगवान से उनको प्रेम है, ज्यादातर लोग 99% पीपल गो टू द टेम्पल, ये नहीं कि भगवान से उनको प्रेम है, बल्कि थोड़ा चेंज आना चाहिए लाइफ में, थोड़ा वैरायटी होनी चाहिए, फॉर दैट रीजन देखो। और वहां भी आप देखिए, हमारे मंदिर में जाइए, आप देखिए वहां पर लोग क्या करते हैं, है ना, लड़के लड़की आते हैं और आपस में बैठ के घंटों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। वो लड़का जो है लड़की के कंधे पर हाथ रखकर भगवान का दर्शन कर रहा है, वो क्या भगवान का दर्शन करेगा, वो भगवान का दर्शन कर रहा है, इजी हैविंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड, नो, उसकी आंखों में काम का दर्शन है, काम से व्यक्ति अंधा हो चुका है, है ना, तो उसको नहीं दिखाई देंगे भगवान, तो ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस, ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस सो दैट, जैसे कुत्ता जो है वो कुतिया को इम्प्रेस करता है ताकि कुतिया सेक्स अच्छा से करने का मौका मिलेगा, दैट्स ऑल। आगे कुतिया जा रही है ना, आप देखिए अभी ध्यान से देखिए, कुतिया जाती है ना तो चार पांच कुत्ते उसके बगल में उसको इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं, है ना, किसके साथ ये है ना सेक्स करेगी कुतिया, है ना। उसी तरह से मनुष्य जो है वो उसका हाल कुत्तों जैसा हो गया है, और कुत्ता और कुतिया मंदिर में भी जाएंगे तो क्या करेंगे, सेक्स, उनके लिए कोई विवेक नहीं है, उनके अंदर डिस्टिंक्शन जीरो है कि कहां क्या करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, तो मंदिर में भी जाएंगे तो क्या करेंगे, सेक्स। तो आजकल का मानव जो है वो बिल्कुल कुत्ते और कुत्तियों जैसा हो गया है, तो मंदिर में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको भगवान से ज्ञान ही नहीं है, तो वहां भी जाते हैं तो सेक्स, एक दूसरे का फोटो खींच रहे हैं, आप देखो जाके देख सकते हो, एक दूसरे का फोटो खींच रहे हैं, भगवान का फोटो नहीं खींच रहे, भगवान से मतलब नहीं उनको, अच्छा सीन है वहां पे जाके ये चलता है। तो इसको कहते हैं कि कितने लोग, तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति जिसको बोलते हैं, और इससे क्या, तो ये साम्राज्य है माया का। और आध्यात्मिकता जो भी आपको दिखती है इस संसार में वो जेन्युइन आध्यात्मिकता नहीं है, दैट इज जस्ट चीटिंग, सो कॉल्ड जेन्युइन आध्यात्मिकता नहीं है। लेकिन यहां पे जो कर्म की बात हो रही है ये जेन्युइन, इसे विरक्त होने के बाद बिना आसक्त हुए कर्म करना चाहिए। और अगर व्यक्ति, इसलिए अगला श्लोक आप पढ़िए ध्यान से, अगर आसक्त विरक्त होकर कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा उसको, नियतम कुरु कर्मत्व, वो तो करना है, लेकिन अगर आपने तरीके से नहीं किया नियत और नियतम कर्म किया लेकिन तरीके से नहीं किया, जो सातवें श्लोक में उस तरह से अगर नहीं किया तो क्या होगा उसका, नवे श्लोक में बताया है, उसको पढ़िए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, किस रूप में, यज्ञ रूप में श्री विष्णु के लिए करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। तो नियत कर्म तो करना है, नियते कुरु कर्मत्वम, लेकिन ये नहीं लिखा है वहां पे कि श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए, वो हटा दिया, देखो दिस इज चीटिंग। इसको कहते हैं धर्म ध्वजी, धर्म का पताका लहरा रहा है उठाए हुए, धर्म ध्वजी, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, है ना, स्पिरिचुअलिस्ट हूं, लेकिन ही इज सेंस ग्रेटिफायर नंबर वन, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है धर्म के नाम पे, आध्यात्मिकता के नाम पे। तो दे डोंट अंडरस्टैंड भागवत गीता, नहीं समझते हो भागवत गीता को, नहीं समझते हैं। तो नियतम कुरु कर्मत्वम, पर फॉर होम, किसके लिए आप कर्म करोगे, विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इस तरह से तुम भाव बंधन से मुक्त रहोगे। और इस तरह से कर्म करने के लिए, जिस तरह से यहां पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जिससे आप भौतिक जगत के बंधन से बचे रहें, और भगवान विष्णु के लिए जो यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए उसको करना आसान नहीं है। कर्म जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना आसान नहीं है। इसलिए इसको पढ़ेंगे हम, इस तात्पर्य को, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य आप लोगों के लिए, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो आपका कर्म ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि आपका, क्योंकि कर्म करेंगे तभी हम जो है वो जीवन निर्वाह के लिए हमें धन मिलेगा। लेकिन यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परहुमान विष्णु आराध्यते, विष्णु पुराणे 388। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अगर नहीं करते हैं और कुछ भी करते हैं तो उसे क्या होगा, बंधन होगा इस संसार। अब आप इस लाइन को अगर ध्यान में रखें तो कितने लोग जो है वो कर्म कर रहे हैं विष्णु के लिए,
आप अच्छा,
हाँ फंसेंगे आप अगर विष्णु के लिए नहीं कर रहे हैं तो। चाहे आप अच्छा भी कर्म करो आपको बंधन डालेगा वो, आप फंस जाएंगे, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से जो है वो क्या करना पड़ेगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, अच्छा करोगे उसका भी क्या होगा, फल होगा, और बुरे कर्म का भी क्या होगा, फल मिलेगा। और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है, इट्स एन आर्ट, है ना। इंग्लिश में इसको थोड़ा पढ़ूंगा, इंग्लिश का है, इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रभाव ने लिखा है। देयरफॉर वन हैज टू वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु, एनी अदर वर्क डन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विल बी अ काउज ऑफ बॉन्डेज, फॉर बोथ गुड एंड एविल वर्क हैव देयर रिएक्शंस एंड एनी रिएक्शन बाइंड्स द परफॉर्मर। देयरफॉर वन हैज टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस टू सेटिस्फाई कृष्णा और विष्णु, एंड वाइल परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज वन इज इन ए लिबरेटेड स्टेज, दिस कॉल्ड लिबरेशन। इफ यू वर्क फॉर कृष्णा मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड। दिस इज द ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, वर्किंग फॉर कृष्णा इज ए ग्रेट आर्ट, इट्स नॉट ईजी टू वर्क फॉर कृष्णा, यू हैव टू लर्न इट, है ना। एंड इन द बिगिनिंग, ध्यान से पढ़िए, एंड इन द बिगिनिंग दिस प्रोसेस रिक्वायर्स वेरी एक्सपर्ट गाइडेंस। क्या चाहिए, नहीं तो हमको लगेगा कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं आप, अपने लिए कर रहे हैं। देयरफॉर वी नीड एक्सपर्ट गाइडेंस। नाउ यू टेल मी हाउ मेनी पीपल हैव आर वर्किंग अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, नन ऑफ देम। टू वी हैव टू लर्न दिस आर्ट। देयरफॉर एनी वर्क इफ यू डोंट वर्क डू अंडर गाइडेंस, देन वी विल बी बाउंड बाय दैट। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो इसलिए One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna or under the direct instruction of Lord Krishna himself. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. So the point I have told you in the beginning, we need expert guidance to fine-tune our activity in such a way. Don't have to leave the activity, but fine-tune your actions in such a way that it should satisfy the Lord. Like you all are a student. So student has to learn the art of how he should study, which will satisfy Krishna. Otherwise that study will bind you in this world. So if you start, you are studying for the purpose that I will get name and fame and puja and pratistha and then lot of wealth and then I will enjoy and lot of facility I will enjoy, then that those facilities will bind you. Because nothing comes free in this world. You understand? Even pratistha doesn't come free. Jab bhi aapko pratistha aayega to utna bada aapke upar zimmedari rahega. कहीं भी कुछ हुआ, सपोज यू बिकम सीईओ ऑफ द कंपनी, तो कंपनी में कहीं भी कुछ गड़बड़ होगा तो आप पकड़े जाओगे. सपोज यू बिकम डीएम, आईएएस ऑफिसर, जिला में कुछ भी गड़बड़ होता है सबसे पहले किसको चीफ मिनिस्टर डांटता है? डीएम को डांटता है सबसे पहले, पकड़ के उसकी खिंचाई होती है. और डीएम की खिंचाई हो गई, अब डीएम जो है वो नीचे के ऑफिसर को खिंचाई करता है. ये परंपरा में खिंचाई आती है. कोई खुश नहीं है, नोबडी हैप्पी. तो पोजीशन तो बड़ा मिला, लेकिन साथ ही साथ क्या मिल रहा है उसके साथ? प्रतिष्ठा मिल रही है. नीचे के लोग प्रतिष्ठा दे रहे हैं, लेकिन ऊपर के लोग लात मार रहे हैं. और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर कोई नहीं है. इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई नहीं है? प्रेसिडेंट के ऊपर भी है जो उसको इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करता है. तो प्रेसिडेंट भी डरता है कहीं कुछ बोल करना दे जिससे कि लोग नाराज हो जाए. प्राइम मिनिस्टर भी डरता है. इसी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो चाहते थे कि देश में बहुत अच्छा कार्य हो, लेकिन कर पाए क्यों? कुर्सी का चक्कर. हाँ, इससे पहले ही उनको साइड कर हो गए. तो ये कहते हैं कि इसको कहते हैं कि बंधन. ये बंधन है. ये आप, हम सोचते हैं बड़ा पोस्ट बड़ा पोजीशन मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, फिर मैं राजा बन गया है. ये कहावत है, साला मैं तो साहब बन गया है. तो वो ये भौतिक, इसको मैं समझा रहा हूं आप लोगों को इसलिए कि समझिए इस संसार को, समझिए कैसे माया कार्य करती है ना. माया जो है आपको, है ना, कहते हैं ना, आपको चढ़ा चढ़ा के मारती है. पहले आप ऊपर चढ़ाएगी, फिर आपकी पिटाई होगी. जैसे कि प्रभुपाद बता रहे थे कि पत्नी जो है आपकी बड़ाई करती है, उसके बाद बोलती है आपका 10,000 रुपया निकाल के आप जाइए हार्ड वर्क कीजिए, पैसा कमा के लाइए. और पत्नी जो है बोलेगी, आएगी आपको एक दो स्वीट वर्ड करेगी ना, थोड़ा सा करेगी, और उसके बाद आपका हार्ड अर्न्ड मनी जो है क्या होगा, ले जाएगी और शॉपिंग खरीद के सारा सामान लाके सिविल एंजॉय एंड देन यू गो एंड वर्क हार्ड एंड अर्न मोर. अब मान लीजिए अगर आपका कोई पैसा जो चुरा लेता है, सपोज, और कोई व्यक्ति आके आपको 10,000 रुपया लेके चला गया, तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको पुलिस में कंप्लेन करोगे ना. आप देखिए पत्नी जो है आपको रोज 20,000-25,000 रुपया जो है वो खर्च कर रही है. हम कहते हैं कितना मुझसे प्रेम करती है मेरी पत्नी, यार देखो सारा पैसा खर्चा कर रही है, इतना प्रेम है मुझसे, है ना। या कभी कभी डांट भी पड़ती है ना, जैसे कहते हैं ना कि कभी डांटती है ना माया, गाली देती है ना। बड़ा आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि नहीं, लेकिन हमने तो देखा है, तो आप लोगों को अनुभव नहीं होगा उतने, क्योंकि आप लोग पारिवारिक जीवन से दूर हैं अभी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा पत्नी जो है कई प्रकार के कड़वे वचन बोलती है, ठीक है। तो पति क्या सोचता है, देखो मेरी ये तो प्रेम का भाषा है, ये जूता से अगर कोई आपको मार रहा है तो ये तो प्रेम से मार रही है, प्रेम से लाओ। तो वही है, लेकिन दर्द तो हो रहा है ना, अरे प्रेम से कोई मार रहा है दर्द तो हो रहा है ना, है कि नहीं। तो इसी तरह से माया का कार्य ही यही है। माया जो है क्या करेगी, आपको बड़े पोस्ट पे बिठाएगी, फिर पिटाई करेगी, है ना। आपको लगेगा मैं तो बड़ा पोस्ट पे हूं, और आप रो भी नहीं सकते, क्यों, बड़े पोस्ट पे रोना नहीं चाहिए। अब आप रो भी नहीं सकते, पिटाई भी हो रही है, छोड़ के भाग भी नहीं सकते, असर बात को क्या, कितना प्रिकेरियस। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, दे कमिट सुसाइड, हाँ अब नहीं छोड़ सकते, तो दे कमिट सुसाइड, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिप्रेशन ब्रेक डाउन, बैठ गए, बैल बैठ गया, है ना। छोड़ भी नहीं सकते, कहते ना गले की हड्डी बन गई, न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं, अंदर भी नहीं डाल सकते, बाहर में फंस गए। तो क्यों फंसते हैं, क्योंकि वो उसे आसक्त होकर कार्य करते हैं। अगर आसक्त नहीं है तो लात मार के भाग जाएगा, बोलेगा आई डोंट केयर, किक, एक किक मारेगा, बोलेगा आई डोंट केयर फॉर योर पोस्ट एंड पोजिशन। जैसे कि दो गधे थे, दो गधे की कहानी आप लोगों को सुना, दो गधे थे, तो एक गधा जो था वो दोनों गधे मालिक के अंदर में काम करते थे। एक गधा जो था तो उसका क्लिक किया एक दिन दिमाग में आइडिया, अरे मैं इतना ज्यादा काम क्यों करता हूँ इस मालिक का, मालिक मुझे मारता है इतना, मैं क्यों इसके अंदर में इतना ज्यादा कर रहा हूँ, खाने के लिए क्या चाहिए मुझे, खाने गधा क्या खाता है, घास खाता है, घास तो हर जगह मतलब बोले, और पानी पीना है बस, और सोना है, सोने के लिए पूरा ग्राउंड है, कहीं भी सो लूंगा, पानी तालाब में पानी है फ्री में, घास खाने के लिए फ्री में है, खा लूंगा, तो फिर मैं इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहा हूं व्यर्थ में, ये तो मूर्खता है। तो उसने डिसाइड किया मैं चलता हूं, मालिक को बोला हरे कृष्णा बाय टाटा हरि बोल, है ना, सी यू लेटर, छोड़ के निकल गया। अपने जाके आराम से घास खाता था, पानी पीता था, सोता था, एकदम जहां मर्जी वहां जा रहा है, कर रहा है। लेकिन जो दूसरा गधा था वो कंटिन्यू किया बहुत दिन इस तरह से, बहुत हार्ड वर्क। तो जो पहला गधा था उसको सडनली याद आया एक दिन अपने दोस्त की, याद आई, गया बोला अरे तो देखा एकदम पूरा इतना लादे हुए है मालिक, और गर्मी की दोपहर में एकदम मुंह से झाग निकल रहा है, चल रहा है गधा। तो उसको दया आ गई, बोला अरे ये क्या कर रहे हो, तुमको सीखना चाहिए मुझसे कुछ, मैं भी गधा हूं, देखो मैं भी खाता हूं, मैं भी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह देखो हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूं, तुम क्यों कर रहे हो हार्ड वर्क, तुम मूर्ख हो तुम। बोला नहीं तुम मूर्ख हो, तुमने बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है, तुम छोड़ के चले गए हो, तुम्हें पता नहीं है, और मैं बताऊंगा भी नहीं तुम्हें मैं क्यों हार्ड वर्क कर रहा हूं, क्योंकि बताऊंगा तो तुम फायदा उठा लोगे। बोला कि ऐसा इसमें क्या हो सकता है, इतना गधे की तरह काम कर रहे हो और तुम इतना बोझ उठा रहे हो, इसमें क्या फायदा हो सकता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो बोला नहीं नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं तुम्हें, बहुत फायदा है, बहुत सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। बोला देखो मैं तुम्हारा मित्र रहा हूं इतने सालों तक, हम साथ में गधे रहे बताओ हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं कहीं। तो बोला ठीक है, तो मेरे मित्र इसलिए तुम्हें बता देता हूँ टॉप सीक्रेट। वैसे मैं किसी को बता, मैंने डिसाइड किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम मेरे मित्र हो बहुत घनिष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जो टॉप सीक्रेट है किसी को मत बताना, केवल तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत दिन पहले की बात है, तुम भी थे उस समय, तुम्हें नहीं बताया था मैंने, लेकिन तुम उस दिन नहीं थे मेरे साथ, कहीं और गए थे काम पे। तो मालिक की बेटी जो थी मेरी, उसने एक दिन बहुत गलती की, उसने खाना बनाया और उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। मालिक बहुत गुस्सा हुआ अपनी बेटी पे, बहुत उसको डांटा और उसका हाथ पकड़ के और मेरे सामने लेके आया। अब बोला, अगर दोबारा गलती करोगी तो तुम्हारी शादी मैं इस गधे से कर दूंगा। उसने प्रॉमिस किया, उसने और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि दोबारा उसकी बेटी गलती करेगी, उस दिन बस काम खत्म, शादी हो जाएगी, मैं उसका दामाद बन जाऊं, बस मजा ही मजा। इसीलिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, और तुम देखो तुम गधे गधे रहोगे, मैं दामाद बन जाऊंगा। तो उसी तरह से फॉल्स प्रॉमिस, माया विल गिव यू फॉल्स, ही हैज द फॉल्स होप, इजंट इट, आसक्त है, इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है मालिक को, क्योंकि उसकी आसक्त है, इच्छा इच्छा है उसकी एंजॉय करने की, इसलिए क्या दुख झेल रहा है। तो उसी तरह से आप जब भी किसी चीज से आसक्त रहोगे, उसके फल से आसक्त हो जाओगे, तो आप जो है बंध जाओगे इस संसार में। अब किसी पोस्ट पोजीशन में आप जाओ तो वहां पे उससे आसक्त नहीं होंगे, हमेशा उसको इंगेज करना है भगवान की सेवा में। और खाने के लिए, खाने के लिए सब इतने आईएएस ऑफिसर हैं, अगर वो रिजाइन करेंगे तो क्या उनको खाने के लिए दिक्कत होगा? कहीं भी जॉब मिल जाएगा उनको। देन व्हाई आर दे लिसनिंग द चीफ मिनिस्टर्स झिड़की? कोई पॉलिश करते हैं जूता चीफ मिनिस्टर का? बताओ, आसक्ति, पोस्ट और पोजीशन से आसक्ति है। अगर वो चाहे तो बोल सकता है आई डोंट केयर फॉर यू, ये सबसे कोई निकाल नहीं सकता, निकाल सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए तो फिर करप्शन होगा, अगर लोग ठीक से अपनी ड्यूटीज करें तो। बोलते नेता लोग प्रेशराइज करते, मैं क्या करूं, करप्शन तो करना ही नहीं, यू आर वीक, आप कमजोर हो, नेता लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप छानो तो आप, अगर आप प्योर हो तो आप क्यों गलत का साथ दोगे? आप दैट यू आर यू ऑल्सो वांट समवेयर, आपको भी कुछ मिल रहा है मसाला, आपको कहीं या तो मनी नहीं, नहीं मैं तो पैसा नहीं लेता, पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन पोस्ट का जो टेस्ट है वो ले रहे हैं आप, मजा, सटल 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 टेस्ट, सूक्ष्म जो मानसिक स्तर पे सूक्ष्म टेस्ट आ रहा है कि आई एम डीएम। अगर मैं डीएम से हट गया तो लोग क्या सोचेंगे? जितने लोग मुझे सैल्यूट मार रहे थे वो क्या सोचेंगे? अरे उतने मुझे मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो वो रिस्पेक्ट का जो मजा है वो ले रहे हैं, जो ज्यादा हायर है पानी के मजा से। तो इसलिए हम उसको सहते हैं, गलत चीजों को सहते हैं, अदरवाइज कोई कारण नहीं है इसको सहने का। तो इसलिए हमें अगर सत्य के मार्ग में चलोगे तो कभी आपको कष्ट नहीं होगा। कभी कर्म कीजिए, कहीं भी रहिए, यू कैन बिकम लॉयर, जैसे आप बोलते हैं लॉयर, अगर आप एक अच्छे लॉयर बनो अच्छा से पढ़ाई करके, तो आपको खाने की तो कभी कमी नहीं होगी ना। हो सकता है कि आपके आप करोड़ों रुपए ना कमाओ गलत लोगों का साथ देकर, लेकिन जो दूसरा गधे से सीखना चाहिए पहले वाले गधे से कम खाने के लिए हमें क्या चाहिए? चार चपाती सुबह और चार चपाती शाम, इतना तो मिल जाएगा ना। हो सकता है मर्सिडीज बेंच ना मिले, है कि नहीं, लेकिन उतना तो मिल जाएगा ना। लेकिन कम से कम हम अपने ईमान को तो नहीं बेचेंगे ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ये भगवद्गीता में भगवान बता रहे कि आसक्त मत हो पोस्ट पोजिशन धन सुंदर स्त्री फॉलोअर्स सबसे आसक्त नहीं होना है और अपने कर्म करते रहो। फिर क्या होगा, फिर उसमें भगवान की इच्छा के लिए हम कर्म कर रहे हैं और जब भगवान की इच्छा की इसको होते आर्ट। तो आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग जब कर्म कर रहे हो अभी स्टडीज कर रहे हैं तो स्टडीज में जो है हमें इसको अच्छे से करना है और इसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग जो भी डिसीजन लो स्टडीज में अपने जीवन में हाँ, आप यहां पे देखो भक्त हैं कैसे करना है उसको, मुझे ये गोल बनाना है लाइफ में, ये गोल बनाना है उसको पूछना चाहिए प्रभु जी ये गोल ठीक है मेरे लिए, कहीं ये मुझे बांधेगा तो नहीं बंधन में, मैं इधर जाना चाहता हूँ लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि जज बनूं, मैं चाहता हूँ ये बनूं ना, या मैं चाहता हूँ कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, प्रभु जी मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ क्या, इसे ऐसा तो नहीं होगा मैं बंध जाऊंगा बंधन में, तो ये पूछना चाहिए भक्तों से। भक्त जो निष्पक्ष है क्योंकि वो भौतिक जगत में नहीं है उससे ऊपर उठा हुआ है तो वो आपको निष्पक्ष गाइडेंस देगा है ना। अगर अपने दोस्तों से आप पूछेंगे तो वो अपने तरीके से आपको बताएंगे, उन्होंने जो प्लानिंग कर रखा है बताएंगे नहीं नहीं मैं तो ऐसा सोच रहा हूं मेरी ही तरह तू भी कर है? लेकिन जो भक्त है वो ये जो इसको जब आप दिल्ली को ऊपर से देखोगे ना ऊपर जाके दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली दूसरी तरह से दिखाई देगी, यही दिल्ली को अगर आप थोड़ा ऊपर जाके देखो फ्लाइट से तो दूसरे तरीके से दिखाई देगी और थोड़ा ऊपर चले जाओ तो दिखाई ही नहीं देगी है ना। तो जो व्यक्ति ऊपर जाता है उसको समझ में आता है कि दिल्ली तो कुछ है ही नहीं, दिल्ली नाम का शहर तो है ही नहीं, तो इट्स जीरो इन दी इंटायर क्रिएशन। लेकिन जो दिल्ली में क्या मैं तो दिल्ली में रहता हूं कैपिटल ऑफ इंडिया, आई हैव अ बिग फ्लैट इन द दिल्ली एंड आई लिव विथ माय इंटायर फैमिली एंड आई एम द किंग ऑफ इंडिया, आई एम प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर आप ऊपर जाके देखो तो कहां किधर है प्राइम मिनिस्टर, दिखाई भी नहीं देंगे आप। तो पर्सपेक्टिव अलग हो तो वही चीजें दूसरे तरीके से आपको दिखाई दे, इसलिए हमें ऊपर करना है अनबायस्ड। तो भक्त है, भक्त को का कोई अपना नहीं है कोई पराया नहीं है, वो बिल्कुल अनबायस्ड गाइडेंस देता है। न तो आपसे उसको कुछ चाहिए न उस आपको उससे कुछ चाहिए, इसलिए वो अनबायस्ड गाइडेंस आपको देगा जो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि उसने अपने अपनी इच्छा त्याग दी है, उसने अपनी इच्छाओं का त्याग किया है, इसलिए उसको पता है वो अपनी इच्छा से रहित कुछ नहीं बताएगा आपको, आपको जो भी बताएगा वो भगवान की इच्छा के अनुरूप आपको गाइड करेगा। तो अपने लाइफ में पढ़ाई कैसे करना है हर चीज का गाइडेंस होना चाहिए, कितना टाइम मुझे पढ़ाई पे देना चाहिए, कितना टाइम मुझे भक्ति में देना चाहिए, हर चीज का गाइडेंस है ना। कैसे आसक्त नहीं होना है, कैसे आसक्त होना है ना? ये आसक्ति कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, इसलिए इट्स अ ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क इन इट्स एन आर्ट। तो हमें जो है कितना एम्बिशन बनाना है कितना एम्बिशन नहीं बनाना है, कितना एम्बिशन डेंजरस हो जाता है ना, उसको बैलेंस समझना है इसको, नहीं तो हम ओवर एम्बिशन करेंगे ओवर इंडियावर अगर करते हैं तो बंध जाएंगे उससे, फिर क्या होगा हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस, और अगर उस तरह से आप करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है भगवत धाम ले जाने वाली है, अगर हम इसको करते हैं भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी और फिर क्या होगा भगवान धाम प्राप्त होगा हमें। तो इसलिए इस तरह से हमें कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप सब स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग गाइडेंस लीजिए है ना, आप वर्क करो है यहाँ पे, मैं तो क्लास दे देता हूँ लेकिन मैं उतना डिटेल में बताने में उतना टाइम नहीं, लेकिन आप लोग वर्क को पकड़िए और अपने लाइफ के बारे में गाइडेंस लीजिए कि कैसे जीवन को जिए। माया जो है बड़ी कठिन है, उसको समझना आसान नहीं है, माया की ट्रिक्स को केवल एक ही व्यक्ति जानता है वो है भक्त, भगवान की कृपा से वो पता कर सकते हैं। आप आज से 10 साल बाद कहां होगे बता देगा भक्त, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, है ना। और माया कैसे आपको परेशान कर सकती है, और इसलिए भक्त का जो भक्त को पता होता है तो आपको मना करेगा, इधर मत जाओ, इधर फंस जाओगे तुम ऐसे जाओ, इधर से निकल जाओ, पतली गली से निकलो इधर माया का प्रभाव नहीं होगा तुम्हें, और तुमको पता, माया को पता भी नहीं चलेगा, तुम पहुंच जाओगे अपने लक्ष्य पर। क्योंकि भक्त को जितने लूप होल्स है माया के, सब श्रीमद् भागवतम से पता है कि माया को कैसे ट्रिक किया जाए, है ना। प्रभुपाद बोलते थे, एक डिवोटी ने प्रभुपाद को लेटर लिखा, प्रभुपाद माया इज ट्रबलिंग मी वेरी मच। प्रभुपाद ने बोला, आई कैन किक माया विथ माई बूट इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, माया कैन नॉट टच यू। प्रभुपाद ने बोला, तो दैट इज द पोजिशन ऑफ गुरु डिवोटी। डिवोटी आपको फुली प्रोटेक्ट करेगा। ये संसार दावा नल है, क्या है? दावा नल, जंगल की आग है संसार, विषा नल है, दीवानी से हिया जोले, लोगों का हृदय जल रहा है, एंग्जाइटी, फियर, लेमेंटेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, ये सब क्या है? हार्ट इज बर्निंग, एंग्जाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, जल रहा है हृदय। इससे गुरु जो है फुल्ली प्रोटेक्शन दे सकता है, भगवान ने उसको इंपावर किया है, शक्ति दी है उतनी, तो क्या आपको प्रोटेक्ट कर सकता है? कितना भी मुश्किल हो, कितना भी संसार जल रहा हो, आप उससे बच जाओगे। ये होते संसार दावा न लीढ़ लोका, त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम, घना बादल की वर्षा करेगा। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य बंदे गुरु श्री शरणारविंद। तो गुरु क्या करते हैं, आपको सावर करेगा, मर्सी। उससे क्या होगा, आप इसी संसार में रहोगे, इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहोगे, बाकी सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंड बाकी सब जो है वो टेंशन में, एंग्जाइटी में, लेकिन आप जो है वही पढ़ाई करोगे, और बड़ा ही आराम से इन मोड ऑफ गुडनेस यू विल एक्सेल इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। आपको चिंता भी नहीं होगा, कठिनाई भी नहीं होगी, और आप जो है अच्छे से बिल्कुल ना शांति और सुख पूर्वक अपने कार्यों को आप पूरा करोगे। दिस इज द ब्यूटी। और वहीं पे लोग क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, दाढ़ी बढ़ी हुई है, आंख अंदर धसी हुई है, किसी की चेहरे पे कोई रौनक नहीं। आर यू सी द बॉयज, वो कम न्यू बॉयज, उनके चेहरे को आप देख लो, आज क्या है, कोई रौनक नहीं है। फ्रॉम द फेस यू कैन मेक आउट व्हाट इज द फेस, इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, देयर इज नो हैप्पीनेस इन साइड। सो हैप्पीनेस इज क्यों, कैसे आएगा, क्योंकि हार्ट इज बर्निंग, स्माइलिंग फेसेज एंड क्राइंग हार्ट। हृदय जो है स्माइल फेस स्माइल कर रहा है, लेकिन हार्ट इज क्राइंग, कार्डबोर्ड स्माइल इसको बोलते हैं, कार्डबोर्ड स्माइल। हाउ आर यू, मूवीज में देखा आपने, आई एम फाइन। थैंक यू। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, एक्सटर्नली गेस्टर्स, एक्सटर्नल गेस्टर्स, देयर इज नो फीलिंग इन द हार्ट, जस्ट लाइक रोबोट्स, हार्ट इज क्राइंग। सो दिस इज, दैट इज कॉल्ड बर्निंग हार्ट, संसार दावानल, दे आर बर्निंग। द डिवोट इज, दे हैव जेन्युइन स्माइल, दे हैव जेन्युइन फीलिंग्स इन देयर हार्ट, दे डोंट डू एक्सटर्नल, दे डोंट वॉन्ट टू इंप्रेस एनी वन, दैट ही हैज टू मेक गर्लफ्रेंड्स, फाइव कुत्ता जो ट्राइंग टू इंप्रेस कुतिया, अंदर परेशान है, अरे ये कुतिया उससे कैसे इंप्रेस हो गई, अब वो परेशान है, वो मेरी कुतिया दूसरे के साथ कैसे चली गई, और सुसाइड कर गया। एवरी डे इन दिल्ली पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, यंग बॉयज आर कमिटिंग सुसाइड, व्हाई, हार्ट इज बर्निंग, हृदय जल रहा है लेकिन दे कांट अंडरस्टैंड, लेकिन बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज कृष्णा हम प्रोटेक्टेड हैं। दिस इज अ पेन, डीप पेन, लेकिन आप लोग देखो बचे हुए हो, क्यों? क्योंकि कृष्णा की मर्सी। तो जब अगर आप भक्तों के गाइडेंस में रहेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे, तो यू विल बी इन द सेम प्लेस बट यू विल बी हैप्पी देयर, आप खुश रहोगे वहां पे, और वहीं पे वो दुखी। इसलिए हमारे एक भक्त हैं ब्रजेंद्र नंदन, वो बोलते हैं कि माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास। तो माया का जो दास होता है हमेशा उदास रहता है ना? लगता है वो एक्सटर्नली दिखाता है कि मैं खुश हूं, लेकिन खुश नहीं है वो, बहुत दुखी है वो। इसलिए क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं लोग, इतने खुश हैं? साइकियाट्रिस्ट को अपनी खुशी बांटने जाते हैं, मेरा खुशी थोड़ा ले लीजिए, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दुखी हैं। Why people are going to psychiatrist today? Number of psychiatrists are increasing. अमेरिका में तो बताते हैं कि 15 करोड़ लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं अमेरिका में, आउट ऑफ 30 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। 15 करोड़, कैन यू इमेजिन स्ट्रेस लेवल। तो इसको कहते हैं दुखी। सो दुखी से अगर हम सुखी बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तों का गाइडेंस चाहिए हमें, गाइडेंस। तो आप नहीं तो आप भी फंस जाओगे, है ना? नहीं तो आप भी फंस सकते हो, है ना? हरे कृष्णा लेकिन फंसे हुए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। प्रभु जी आपने बोला चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन हैप्पी हो ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम? आप अपने मन से कर रहे हो तो कैसे हैप्पी होगे? चैंटिंग तो कर रहे हो लेकिन अपने मन से कर रहे हो बाकी सारा कर, तो गाइडेंस होना चाहिए, देन यू कैन बिकम हैप्पी। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्मा सनत्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आनंद का सागर की वृद्धि होगी हार्ट में, यू विल फील इट। आपको इतना पोस्ट पोजीशन की जरूरत नहीं है, आई डोंट हैव बिग पोस्ट एंड पोजीशन, मेरे पास मनी नहीं है, आई डोंट हैव बिग बैंक बैलेंस, बट आपको लगता है कि मैं दुखी हूं, यू सी? मेरे पास धन ऐश्वर्य नहीं है, तो सुखी होने के लिए आपको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो ठीक है, आप उसको भगवान की सेवा में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू कैन गेट इट इट्स वेरी गुड, वी विल एंगेज दैट, बट डू नॉट डिपेंड ऑन देम। अगर नहीं भी मिले तो ये नहीं कि ये नहीं मिला तो मैं दुखी रहूंगा, नो, वी डोंट डिपेंड ऑन देम। लेबर नहीं रहना है किसी भौतिक चीज पे अपनी खुशी के लिए, ये खुशी जो है भौतिक चीजों से परे है। एक गरीब व्यक्ति ज्यादा खुश है एक धनी व्यक्ति से। आप देखिए संसार में जो धनी व्यक्ति उसको नींद नहीं आती रात में, स्लीपिंग पिल्स लेके सोता है, सीईओ ऑफ द कंपनी इज टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, फिर भी उसको नींद नहीं आती कई बार सीईओ को। एसी एयर कंडीशन कमरा है, हर फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आएगी, दवाई देना पड़ता है सोने के लिए। और एक गरीब व्यक्ति है उसके पास, वो बाहर सो रहा है, ओस पड़ रही है लेकिन फिर भी वो सो रहा है, आराम से नींद आ रही, तो कौन सुखी है? तो सुखी होने के लिए कोई जरूरी नहीं है शांति की, बुझने की टू हैव सो मेनी फैसिलिटीज, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अगर उसको फुलफिल हो गया एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, मोस्ट हैप्पी। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के अर्थ को हमें समझना है और फिर तो इस भक्त आपको गाइड करेंगे हर जगह बेगिनिंग, बाद में तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना? जैसे कि आप जब साइकिल पहली बार मोटरसाइकिल साइकिल सीखते हैं जब पैडल पे ध्यान रहता है, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो बात कर रहे हो फोन पे और चला रहे हैं कि नहीं, फोन पे बात कर रहे हो गाड़ी चला रहे हैं। तो उसी तरह से इन द बिगिनिंग यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, हर चीज हर जगह पे गाइडेंस पूछना है। बाद में जब आप सीख गए तो क्या होगा, फिर आप अपने आप चलाओगे, आप खुद ही नहीं चलाओगे दूसरों को भी सिखाओगे। तो इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है फायदा उठाइए इस मौके का, तो अपने आप को बचाइए ना इस बंधन से, भाव बंधन से, है ना, और हमेशा हमेशा के लिए सुखी बनिए। क्योंकि लोग पूछते अरे प्रभु जी आप लोग इतना क्यों करते हैं हमारे लिए, है ना? जैसे हम लोग गए थे उधर अजमेर में एक प्रोग्राम किया था, तो वहां पे एक लड़का बोल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतना क्यों कर रहे हैं हमारे लिए, हमें प्रसाद खिला रहे हैं, हमें आप लोग दिल्ली से इतना खर्चा करके आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यू रैस्कल वी आर कमिंग टू मेक यू हैप्पी, आप सुख, मेरे पास अगर कुछ मटेरियल है सुखी सुख है तो मैं आपको बांटूंगा, है कि नहीं? कोई व्यक्ति के पास अगर कुछ अच्छा चीज है उसको बड़ा मजा आ रहा है तो ही वांट्स टू शेयर, अकेले थोड़े ना खुशी को रखा जाता है, खुशी बढ़ती है बांटने से, है ना? तो इसलिए मैं बांटना चाहता हूं आपको, तो वाई यू आर सस्पिशियस, क्योंकि संसार में लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ देता नहीं है बिना कुछ लिए हुए, तो लोग का एक्सपीरियंस गलत है, इसलिए सोचते हैं कि जरूर कुछ होने वाला है। क्यों कर रहे हैं आप, अरे क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप मूर्ख और बुद्धिमान बन जाओ, इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना है इसको, और भक्तों का पूरा फायदा उठाइए, आप सब देश में रह रहे हैं ना, तो उसका पूरा फायदा उठाइए। आप लोग अपने जीवन के लक्ष्य को ठीक से सेट कीजिए, गोल को, न किस डायरेक्शन में जाना है, केवल भक्ति, अभी हम लोग भक्ति, केवल भक्ति और हमारा जीवन का कार्यकलाप में नहीं कि बिल्कुल अलग अलग दोनों से संबंध है। अगर आज आपका मार्क्स खराब हो गया तो अगले दिन चैंटिंग में मन लगेगा, मान लीजिए आप फेल हो गए, 10 सब्जेक्ट में 10 में फेल हो गए, अगले दिन चैंटिंग मन लगेगा नहीं, घर से फोन आएगा झिड़की पड़ेगी, तू बेस में रहता इसीलिए ऐसा हो गया, मैंने बोला था तुम्हें कि तू बेस में मत रहो, वहां पर तू केवल भजन करता होगा। अब अबू लल्ला तो बात सही बोल रहे पापा, छोड़ देना चाहिए तो। माला के कारण ही कहीं ऐसा तो नहीं, माला के कारण ही हो गया, जब श्याम अनुग्रह से नाम सुनाई जिस पर मेरी कृपा होती उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, लगता है मेरे ऊपर कृपा तो नहीं हो रही कृष्ण की, कुछ ज्यादा ही, इसलिए छोड़ देते हैं। इसका मतलब अभी हमारी भक्ति जो है डिपेंड है हमारे कार्यकलापों से, इसलिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बैलेंस करना होगा अपनी पढ़ाई, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसको डिस्कस कीजिए आप सब लोग अपने कैसे सेट करें, है ना? और हमारे अपर प्रो एक्सपर्ट हैं, पहले प्रोफेसर रह चुके हैं, लेक्चरर रहेंगे, आपको बताएंगे, है ना, कि कैसे जीवन के जीना है। अपने तरीके से मत जीजिए, अपने तरीके से अपने लक्ष्य को सेट मत कीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, अब बाद में फंस जाएंगे, फिर बोलेंगे प्रभु जी अब मैं भक्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं अब देखिए फंस गया हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, तो पहले से ही क्यों ना व्यवस्था कर ली जाए, ऐसे जीवन को मॉल्ड किया जाए, है ना, कि आई कैन गेट टाइम थ्रू आउट माई लाइफ, तो उसके लिए गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए बता रहे प्रभुपाद यहाँ पे, इट्स ए ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क एंड इट नीड्स गाइडेंस इन द बिगिनिंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन व्हाट एवर यू हैव डिस्कस्ड?
आंसर समय के हिसाब से बाद में दे देंगे। कल से मन में ही आता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या कोई करवा रहा है मेरे से, इसमें कंफ्यूजन होता
है। नहीं, एक्चुअली हम नहीं करते हैं, हम करते हैं, कोई करवाता नहीं है हमें, हमारी इच्छा है करने की। बाकी जो है दो चीजें इसमें, एक तो आपका प्रारब्ध कर्म जो है, और दूसरा आपकी इच्छा, दो चीज है। बताया जाता है आप जो भी कार्य करते हो, भगवद गीता में कृष्ण ने बताया है 18वें अध्याय में कि 5 व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कर्मों के लिए, आप अकेले नहीं, कोई भी कर्म आप अकेले नहीं कर सकते। 18वें अध्याय में जो है
Thank you.
पंद्रहवां श्लोक, अठारहवें अध्याय का पंद्रहवां श्लोक जाइए। पढ़िए पंद्रहवां श्लोक।
मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो
चौदहवां
कर्म का स्थान कर्ता विभिन्न इंद्रियां अनेक
नहीं, इससे पहले वाला पुस्तक शुरू कीजिए। सॉरी,
हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो।
तो समस्त कर्म की पूर्ति के लिए कितने कारण हैं? केवल आप नहीं है अकेले, तो पांच कौन कौन कारण है, अब सुनिए।
कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है।
तो इसमें पांच चीज बताया गया है। एक तो आपका शरीर, अगर शरीर खराब है तो आप कर्म कर पाएंगे? आप कितना भी चाहते हो, आपका शरीर खराब कर दिया है, पेट में जो है वो आपका पेट गड़बड़ हो गया, आपको परीक्षा देने जाना है, आप दे पाएंगे परीक्षा? इसका मतलब आप चाहते हैं कर्म करना, लेकिन आपके शरीर जो आपको साथ, तो शरीर भी कारण है कर्म करने का। और दूसरा क्या है? कर्ता, कर्ता मतलब आप जो कर रहा है वो भी कारण है। और तीसरा विभिन्न इंद्रियां, इंद्रिया मतलब सेंसेस, पांच कर्म इंद्रिय और पांच ज्ञान इंद्रिय, अगर वो साथ नहीं देगा तो आप कर्म नहीं करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स। और तीसरा है अनेक प्रकार की चेष्टाएं, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स जो हम उसके उपकरण, है ना, कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, है ना। तो और उसके अलावा प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, है? लेकिन अंत में सारा कार्यकलाप जो है परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, और परमात्मा भी है एक कारण, लेकिन बाकी सारा जो है सैंक्शन होता है परमात्मा के द्वारा। लेकिन जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती हैं, शरीर हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करते। आपको, आप कंट्रोल करते हैं आपका डाइजेशन सिस्टम, कैसे डाइजेशन होता है, आप तो यहां से डाल लेते हो बस, और अंदर क्या हो रहा है आपको पता है, तो कौन कर रहा है ये सब? ये भगवान के एजेंट्स हैं, डेमीगॉड्स, देवता हैं। हर शरीर का पार्ट जो है वो देवताओं द्वारा कंट्रोल होता है, तो देवता लोग जो है वो करते हैं सारा कार्य, तो उन पे भी हम डिपेंड हैं। जब तक हम आसक्त हैं इस शरीर से, तब तक हम जो है वो इनका पांच कारण है करने के। लेकिन एक व्यक्ति जब इन कर्म से मुक्त हो सकता है, तो हम, आपने जो प्रश्न पूछा था कि लगता है कोई करवा रहा है, तो करवा रहा है, यस। आप जो है सेक्स नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर इम्पल्स, स्ट्रांग इम्पल्स आता है सेक्स का, है ना, जैसे कि कोई आपको करवाना चाह रहा है, है कि नहीं? तो कौन है वो? तो कृष्णा बता रहे हैं, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, काम एस क्रोध एस, कौन है? तो बताते हैं कि कृष्ण बताते, अर्जुन पूछता है ये प्रश्न, कौन है तुम्हें हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे कर्म करवाता है? तीसरे अध्याय में ही बताया है, तीसरे अध्याय में आपका लास्ट में ये प्रश्न पूछा है अर्जुन ने। छत्तीसवां श्लोक तीसरे अध्याय का, अर्जुन ने कहा, पढ़िए।
हे वृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो।
समझ रहे हैं, आपका भी यही प्रश्न है ना, कि कोई बलपूर्वक लगता है हमसे करवा रहा है, तो अर्जुन ने यह प्रश्न पूछ रखा है भगवान से। तो सुनते हैं कि भगवान क्या उत्तर देते हैं आपके प्रश्न का। पढ़िए।
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्व वक्षी पापी शत्रु है।
इसका कारण कौन है? काम, लस्ट, वो करवाता है और कोई नहीं करवाता। और काम क्या है? काम हमारे पिछले जन्मों का किया हुआ कर्म काम के रूप में हम पे अटैक करता है। अगर हमने पिछले जन्म में हमारे अंदर बहुत इच्छाएं हैं तो इच्छाएं दबी हुई हैं। जैसे बच्चे के अंदर भी सेक्स होता है लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ रहता है, लेकिन जैसे बच्चा एक पार्टिकुलर स्टेज में आता है, बच्चा आप देखो, छोटा बच्चा स्त्री की गोद में खेलता है, उसको थोड़ा भी आभास रहता है सेक्स का? नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा एक पार्टिकुलर स्टेज पे पहुंचता है, काम क्या होता है? उसको अटैक करता है। इतना स्ट्रांग इंपल्स आता है काम का कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये काम क्या है? ये पिछले जन्मों का कर्म है, जो कि सही समय पर बिल्कुल प्रकट होगा। आगे आप देखते हो सडनली आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, सडनली काम प्रकट होता है हर दिन, है कि नहीं? आप बैठे हुए सब अच्छा से पढ़ रहे, सडनली पता नहीं कहां से प्रकट हो गया। और ये काम जो है, बता रहे कृष्णा, नेक्स्ट देखिए, पढ़िए। जिस प्रकार
अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की भावनाओं से आवृत रहता है।
हाँ, तो जीवात्मा क्या रहती है? काम से आवृत, ढकी हुई रहती है, और काम उसको जिधर ले जाना चाहता है उधर ले जाता है। इच्छा इधर जैसे इच्छा करता है मन है? अब काम रहता कहाँ है? और आगे पढ़िए।
इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
हाँ, कभी भी तुष्ट नहीं होता ये काम, और जलता है अग्नि जैसे जलती है। और ये रहता कहाँ है? काम का स्थान कहाँ है? कहाँ पे छुपा हुआ है ये? पढ़िए।
इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है।
हाँ।
इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है।
हाँ। तो करना क्या चाहिए हमें? नेक्स्ट।
इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार इस विनाश कर्ता का वध करो।
तो शुरू में ही सबसे पहले इसी को करना है, इसी को मारना है सबसे पहले, प्रारंभ में ही नहीं, बाद में नहीं, बाद में नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि काम को सबसे पहले कंट्रोल करना है। इंद्रियों को बस में करके पाप के महान प्रतीक, यहां भी कृष्ण बता रहे हैं ये पाप का महान प्रतीक है काम, इसका दमन करो। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार का ये विनाश करता है, ज्ञान का, ज्ञान को ढक लेता है। कामात भौति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये स्मृति को नष्ट कर देता है, मेमोरी को ही ढक देता है, कोई याद नहीं रहेगा प्रभु जी ने क्या बोला था क्लास में, मैंने क्या प्रॉमिस किया था, वो सब भूल जाएंगे। काम जब आता है तो बहुत जबरदस्ती आपको खींच के ले जाएगा। नहीं, काम का मतलब है कि जो भी आपको चीज अच्छी दिखे उसको अपने कंट्रोल में करने का प्रयास की इच्छा, इसको बोलते काम। सुंदर स्त्री जहां भी दिखे मेरी होनी चाहिए, आई शुड इंजॉय, इसको बोलते काम। वो एक सेक्स का हुआ। इसके अलावा सुंदर कार किसी की भी हो मेरे पास होनी चाहिए, मेरे अंडर में राउंड, जैसे कुबेर का पुष्पक विमान देखा मेरे पास होनी चाहिए, सीता को देखा मेरे पास होनी चाहिए, इसको बोलते हैं लस्ट, काम। तो समझ गए आप, तो ये पांच कारण हैं, और ये पांच कारण और ये काम, तो ये मेनली है। तो कोई कराता नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही कर्म जो है हमें, उसके कारण हमारा शरीर एक डिजाइन किया था। जब भी व्यक्ति को जो शरीर डिजाइन होता है, हाँ, पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार शरीर को डिजाइन किया जाता है हमारे,
पिछले कर्मों में तो हमारा वश है नहीं।
हाँ, तो जैसे आपका जो आज जो शरीर है हमारा, ये पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार डिजाइन हुआ है ना, उसमें उतनी फैसिलिटी दी गई है। जैसे आप, आपके पास अगर आपके पास आप 5,000 रुपये अगर पेमेंट करोगे तो आपको उस टाइप का मोबाइल मिलेगा, है कि नहीं। आप मोबाइल की दुकान पर जाइए जिसमें कुछ फंक्शन होंगे, कुछ फैसिलिटी होगी, इंटरनेट फैसिलिटी को चाहिए तो आपको 7,000 पे करना पड़ेगा। आपके बैलेंस में अगर 7,000 है तो ठीक है, आप इंटरनेट फैसिलिटी वाला ले लीजिए। अगर ज़्यादा है तो आपको लैपटॉप की फैसिलिटी मिलेगी भी मोबाइल में। तो उसी तरह से ये शरीर जो है उसी टाइप का है। तो भगवान आपके कर्मों को देखते हैं, अच्छा पिछले जन्म आपने क्या इच्छाएं की थी, तो उसके अनुसार आपके अंदर फैसिलिटी ऐड किया जाता है। अगर आपने बहुत काम करने का इच्छा किया था, बहुत ज़्यादा सेक्स का इच्छा किया था, तो आपको ऐसा शरीर दिया जाएगा, मसलर बॉडी रहेगा, आप खूब जम के आप सेक्स कीजिए, है ना। और फिर जो है क्या होता है, तो ये इच्छा पहले और उस तरह का डिजायर सेट किया रहता है, ट्यून किया रहता है, फाइन ट्यून, है ना। पिछले जन्म में आपने किया था, परमात्मा याद दिलाएंगे, जैसे ही पर्टिकुलर से जाए याद दे, देखो याद करो, याद करो, सुंदर स्त्री है, याद करो, पिछले जन्म में बहुत इच्छा किया था, करो, मिल गया, है ना, याद दिलाएगा परमात्मा, जैसे स्विच ऑफ करेगा, स्विच ऑन कर देगा, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे स्मृति आ रही है, स्विच ऑन हो गया, अब देखो देखो। तो इस तरह से जीवात्मा उसमें जाता है। तो परमात्मा भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसके आधार पे कर रहा है, पिछले जन्मों की इच्छा के आधार पे। इस तरह से परमात्मा भी कारण है। अगर परमात्मा चाहे तो स्विच ऑन नहीं करेगा, स्विच ऑफ रखेगा, उसके हाथ में है। तो इस तरह से परमात्मा भी कारण है। परमात्मा ने अगर स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद जो है इंद्रियां कारण है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा आप देखोगे, है ना। और उसके बाद शरीर, जो कि एग्जैक्टली कार्य करेगा, है ना, लेकिन शरीर, लेकिन इच्छा जो होता है वो कौन करता है, कर्ता करता है, जीवात्मा, है ना।
सबसे बड़ा कारण हम खुद
हैं। हाँ, सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं, जहां से शुरुआत होती है इच्छा से। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के कारण जो है वो, इच्छा और द्वेष से जो है काम उत्पन्न होता है, और फिर वहां से जर्नी शुरू होती है, फिर बाकी सारे लाइन में, एक लाइन में हेल्प करते हैं आप। तो ये जो पिछले जन्मों का कर्म है वो जो हमारे ऊपर इम्पोज होता है, जैसे आपको अब मैंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, अभी आपको सेक्स से बचना चाहिए, अब आपने समझ लिया, अच्छा सेक्स से बचना चाहिए, लेकिन पिछले जन्म में आपने बहुत इच्छा की है, तो वो जो कर्म है आपको क्या करेंगे, पुश करेंगे, ढकेलेंगे। अब आप नहीं जाना है मुझे, मैंने तो क्लास में सुन लिया, लेकिन पिछले जन्म में आपने खूब इच्छा किया था, तो वो अपना ढकेल रहा है, आप इधर से खींच रहे हो, है ना। यू अंडरस्टैंड, संघर्ष है, पिछले जन्म का कर्म और इस जन्म का कर्म, दोनों में क्या हो रहा है, खींचता है। इस जन्म में आपने कर्म अच्छा कर दिया, आप यहां आ गए, अब ये अच्छा कर्म हो गया, अब ये अच्छा कर्म आपको ठीक करने का प्रयास कर रहे, और पिछले जन्म में आपने बुरे कर्म किए तो आपको ढकेलने का प्रयास कर रहे, इसमें टसल हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, लगता है कि हमें कोई ढकेल रहा है, लेकिन कोई नहीं, वो हमारा अपना ही कर्म है जो ढकेल रहा है हमें। यस,
तो यही चीज कहीं ना कहीं भाग्य के साथ में नहीं है, अगर हमारा कर्म इतना प्रबल हो तो फिर हम भाग्य में विजय प्राप्त कर सकते
हैं। क्यों नहीं कर सकते, भाग्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये है। अगर आप कर्म अच्छा से करोगे तो, इसलिए आप देखो मेहनत करके लोग करते हैं, लेकिन उसमें भी विजय नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं, आप कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। जैसे कि एक गाय है, तो गाय जो है वो खूंटे से बंधी हुई है, और उसका खूंटा रस्सी जो है उसका लंबाई इतना है, तो गाय जो है वो अपने आप को खूंटा के यहां भी रख सकती है, यहां भी रख सकती है, यहां भी, और अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस में गाय खड़ा हो सकती है, अनलिमिटेड, अनंत, लेकिन विद इन दैट सर्कल ओनली। असल बात को क्योंकि वो खूंटा का कैपेसिटी है, खूंटा का जितना लेंथ है उसी तरह से हम भी वी कैन हैव अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर बट विद इन दिस मटेरियल बॉडी. यू कैंट डिजायर टू गो ऑन सन एंड सिट देयर, क्योंकि आपका बॉडी वैसा नहीं है. तो ये बॉडी क्या है? रस्सी है. बॉडी क्या है? इसका अपना लिमिटेशन है. तो इस लिमिटेशन के अंदर आप कई चीजें प्राप्त कर सकते हो. लेकिन इससे आप चाहोगे मैं पहाड़ उठा लूंगा अपने हाथ पे, यू कांट. लेकिन हाँ, थोड़ा सा मसल उसल बना के आप 200-300 केजी का लोड उठा सकते हैं, कॉमनवेल्थ में आपको प्राइज मिल सकता है, दैट्स ऑल. लेकिन आप ये नहीं कि पहाड़ उठा लोगे, इच्छा के द्वारा इतना आप परिवर्तन नहीं कर सकते. असल बात को तो परिवर्तन किया जा सकता है अपने भाग्य को बदल से, लेकिन एक लिमिट की. लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को अनलिमिटेड प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर सकते हो. वन स्ट्रोक में यू कैन अचीव बिगेस्ट. नेक्स्ट लाइफ में आप जो है कहां से कहां पहुंच सकते हो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा. तो ये संभव है स्पिरिचुअलिटी के द्वारा. लेकिन मटेरियल एफर्ट अगर डाल के हम सोचेंगे कि हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे तो संभव. पर यूजुअली हमने देखा कि जैसे लोग सोचते हैं कि मैं हार्ड वर्क थोड़ा कर दूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना? ऐसा नहीं होता है. आपको जितना क्वांटिटी में हैप्पीनेस आपको फिक्स किया गया उतना मिलेगा. अगर आप ज्यादा प्राप्त भी कर लिए, मान लीजिए आपने थोड़ा मेहनत हार्ड वर्क करके थोड़ा ज्यादा प्राप्त कर लिया, तो उससे क्या होगा, आपको रोग हो जाएगा और उतना ही कम माइनस भी हो जाएगा आपका. नहीं कर सकते. भगवान की इच्छा के खिलाफ जो है हम एक कदम भी ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकते इस संसार में. हाँ, अगर भगवान से प्रार्थना करें तो वो आपको छोड़ देंगे. कर्म को भगवान क्या करते हैं? कर्म को नष्ट कर सकते हैं भगवान, अगर वो भगवान खुश हो गए. जस्ट लाइक ए मजिस्ट्रेट, अगर लॉ के हैं तो थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा रहेगा. मजिस्ट्रेट जो है, अगर आप मजिस्ट्रेट को आप क्रिमिनल आया है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है? उसको सजा देता है जेल में. तो जेल में जाने के बाद अगर वो कैदी जो है, अगर जेल के नियमों का बिल्कुल अच्छा से पालन करता है और अपने आप स्वीकार कर लेता है मैंने बहुत गलत किया है, क्योंकि जेल में डालने का उद्देश्य क्या है? रिफॉर्म, है ना? तो अगर कैदी इस बात को महसूस कर ले कि हाँ मैंने गलत किया और आज से कभी नहीं करूंगा ये गलती, तो देन देयर इज नो नीड टू कीप हिम इन जेल, इजंट इट? क्योंकि जेल में रखने का उद्देश्य ही कि उसको इस बात को रियलाइज कराना. पर मान लीजिए कोई कैदी 10 साल से जेल में, लेकिन अभी तक उसको रियलाइज नहीं हुआ और उसने फिर से किसी को पकड़ के पिटाई कर दी जेल में, दूसरे कैदी को, तो जेल से रिलीज होगा? नहीं होगा. लेकिन कोई कैदी अगर जो 10 साल भी अगर रहा तो नहीं होना चाहिए उसको जेल से रिलीज. लेकिन जो कैदी अभी एक दिन भी जेल में नहीं गया, लेकिन अगर उसको रियलाइज हो गया कि ये I have done this great mistake, I should not do it again in my life. तो फिर उसको जेल से रिहा किया जा सकता है. आप पता नहीं आप लोगों के लॉ में है कि नहीं ऐसे, है ना? Yes. उसी तरह से भगवान के लॉ में ये है, क्योंकि कृष्णा हार्ट में बैठे हैं. जैसे देखते हैं ये भक्त जेन्युइन हो गया है अब, है ना? ये प्योर हो गया. अब देखो, अब ये मान लिया कि मैंने गलती करता हूं, आज से मैं ये भगवान मैं क्यों कर रहा हूं ये गलती, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं नहीं करना चाहता हूं. जब भगवान देखते हैं कि ये सिंसियर हो गया, तुरंत सारे पापों को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सोचो मत, मेरी शरण में आ जाओ. भगवान बोलते हैं एक क्षण में मुक्त कर देंगे भगवान सारे पापों से, और आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं इमीडिएटली, सारे दुखों से छुटकारा मिल सकता है. लेकिन इसके लिए हमें सिंसियरली इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें गलती किया है, मैंने पाप किया है, हे कृष्णा आप मुझे हेल्प कीजिए. तो इसलिए हमने जो गीत गा रहे थे गोपीनाथ सॉन्ग, वो यही था. हम गोपीनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि गोपीनाथ है विषय दुर्जन सदा कामे रत किसी नहीं मोड़ गुण, कि मेरा जो मैं इतना विषयी दुर्जन हूं, ये जो मन है मेरा ये विषयी है, दुर्जन है, दुर्जन है, सदा काम में रत रहता है, मेरा कोई गुण नहीं है गोपीनाथ, हमार भरोसा तुम्ही, मेरे भरोसा केवल आप ही हैं, है ना। तुम्हारे चरणे लई न शरण, तो आप अगर जज से आप ऐसा कोई क्रिमिनल ऐसा प्रार्थना करेगा इतना हम्बल विनम्र होके, तो जज उसको माफ नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा? अगर ऐसा कीर्तन किया जाए जज के सामने क्रिमिनल करे इतना फीलिंग के साथ लेकिन तो इसलिए इस तरह से डिसीजन होता है भगवान की कोर्ट में। हरे कृष्ण।